الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ مدثر کی تفسیر ہماری چل رہی ہے اس کلاس میں. خلاصہ تفسیر میں ہم نے پیج نمبر 608 کے درمیان تک پڑھ لیا تھا، اور اب ہم نے شروع کرنا ہے یہاں سے کہ جب ایمان والے جنت سے سوال کریں گے، یعنی اصحاب الیمین وہ سوال کریں گے مجرمین کے بارے میں کہ، یا مجرمین سے سوال کریں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں جا پڑے. تو اس کے بارے میں خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں پیج نمبر 608 کے اوپر کہ مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا. وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے. لم نکو من المصلین و لم نکو نطعم المسکین. اور جو لوگ دین حق کے ابطال کے مشغلے میں رہتے تھے، ان مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلے ابطال دین میں رہا کرتے تھے. یعنی جو لوگ دین کو مٹانے کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے، تو ہم بھی انہی کے ساتھ ساتھ اسی طبی فعل کے اندر مشغول رہا کرتے تھے. یعنی دین کو باطل کرنا، دین کو جھٹلانا. ابطال کا مطلب کیا ہے؟ باطل کرنا. باطل کا مطلب اس کو جھٹلانا، نگیٹ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا وغیرہ، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہم کو موت آ گئی. ٹھیک ہے، دیکھیں لفظ ہے قرآن کا یقین، اور یقین کا جو لفظ ہے وہ قرآن کے اندر دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کہ جو ایمان والے وہ قیامت کے بالکل ڈفرنٹ معنی میں، ایسا یعنی ایسا بھروسہ ہوتا ہے قیامت کی خبروں کے اوپر کہ گویا کہ وہ قیامت کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مشاہدہ، یقین جو ہے وہ مشاہدے سے آتا ہے. تو ایمان والوں کو قیامت کے اوپر یقین ہوتا ہے، تو یقین کا وہ بھی استعمال ہے قرآن کے اندر ہی، لیکن اسی لفظ یقین کا استعمال جو ہے وہ موت کے لیے بھی ہوتا ہے. جس طرح سے سورت کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی یقین کا مطلب جو ہے وہ موت ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جب یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، اور جب تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یعنی وہ والا یقین، وہ مشاہدے والا یقین ہے نا، اور جب تمہیں یقین حاصل ہو جائے تو اس کے بعد تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس یقین کو دوسرے معنی میں لیں گے یا پہلے معنی میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بھائی اس وقت تک عبادت کرو اور اس کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو اہل بدعت حضرات ہوتے ہیں نا، جن کو بریلوی بھی کہا جاتا ہے، حریف پٹری والے بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے یہاں جو بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا بزرگ، تو وہ پھر نماز نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا، پردے وردے کی ان کے پاس پھر کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے، नमाज और दूसरी जो शरीर जो जिम्मेदारियां होती हैं उनसे वो अपने आप को बालातर कर देते हैं। और उसकी रीज़न क्या देते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, वाबुद रब्बका हत्ता यातिया कल यकीन, कि उस वक्त तक इबादत करो जब तक कि तुम्हें यकीन ना आ जाए। तो हमें तो यकीन आ गया है, हमें तो मुशाहदे का दर्जा हासिल हो चुका है, तो अब हमारे ऊपर से इबादतें साकित हो गई हैं, अब तो हम हर वक्त ही इबादत के मोड में रहते हैं। तुम लोग तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, हम तो हर वक्त ही नमाज पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब हमें पर्दे की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पर्दा जो है ना वो अब तो हमारे दिलों पे पड़ चुका है, इस तरह वो कहते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ खवातीन होती हैं वो भी इसी तरीके से विलायत के दर्जा उला के ऊपर पहुंच जाती हैं ना, तो फिर वो भी ये कहती हैं कि पर्दा तो आंखों का होता है, चेहरे का पर्दा तो होता ही नहीं। बहरहाल तो वो यकीन के दर्जे पे पहुंची हुई होती हैं, इस वजह से इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो यकीन का मतलब मौत भी है, तो यहाँ पर भी यकीन का मतलब मौत ही है कि हत्ता याती हत्ता अतानक यकीन, हत्ता कि हमें मौत आ गई। अच्छा, और हम उन हरकात से बाज नहीं आए, यानी खात्मा इसी नाफरमानी पर हुआ, ठीक है। तो तौबा जो है वो तो कबूल होती है आखिरी वक्त तक, जब आखिरी वक्त शुरू हो जाता है, यानी जब हजरत जी जैसे फरमाते हैं कि गले का घुंघरू बजना शुरू हो जाता है, गरगरे की, जैसे हम गार्गल करते हैं ना गार्गल, तो गार्गल में जिस तरह गले से आवाज निकल रही होती है उसी तरीके से आखिरी वक्त में कुछ लोगों के मुंह से ऐसी आवाज निकलना शुरू हो जाती है, गार्गल वाली आवाज, गरगरे वाली आवाज। तो वो ऐसा वक्त होता है कि जिस वक्त इंसान का ताल्लुक इस दुनिया से कट रहा होता है और अगली दुनिया से उसका ताल्लुक बन रहा होता है, तो उसको फिर फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, यानी उस वक्त भी कोई तौबा कर सकता है लेकिन कबूल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि फिरौन और उसके जो लश्कर वाले थे उन्होंने इस मौके पर तौबा करी थी, उनको फरिश्ते नजर आने शुरू हो गए थे, ठीक है। जब वो डूब रहे थे ना तो उस वक्त फरिश्ते नजर आना शुरू हो गए थे, तो उस वक्त की तौबा उनकी कबूल नहीं की गई थी, ठीक है। कल मर्दों के अंदर भी यही मजमून चल रहा था सूरह निसा की तफसीर के तहत। तो जब मौत आ गई तो उस वक्त तक अगर तौबा नहीं करी तो खात्मा फिर नाफरमानी पर ही हुआ, इस वजह से हम दोजख में आए हैं। यानी जो सवाल था कि भाई मा सलककुम फी सकर, तो उसका जवाब ये बना कि हम इस वजह से सकर के अंदर पहुंचे हैं। और इससे ये लाजम नहीं आता कि कुफार मुकल्लफ बिल फुरू, यानी नमाज रोज़ा अहकाम शरईया के मामूर हों। क्या मतलब कि भाई यहाँ पर वो रीज़न क्या बता रहे हैं अपने जहनों में जाने का, ये तो नहीं बता रहे कि हमने कुफर किया था इस वजह से हम जहनों में चले गए, बल्कि क्या बता रहे हैं कि हमने नमाजें नहीं पढ़ी। तो नमाज क्या है, ये अमल है, ठीक है ना, ये दिल की तस्दीक और जुबान का इकरार नहीं है, ये तो अमल है। तो अमल जो होते हैं ये असल नहीं होते हैं, अमल क्या होते हैं, फुरुआत होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस। जबकि जो असल होती है यानी जड़ या तना, ये असल होती है। तो ये तो ईमान है, ठीक है। तो कुफार जो हैं वो तो नमाज पढ़ने के मुकल्लफ ही नहीं है, उनसे तो कोई डिमांड ही नहीं है नमाज पढ़ने की, ठीक है। उनसे डिमांड क्या है, इस्लाम लेकर के आओ, ठीक है, तस्दीक करो अल्लाह के नबी की, ये है उनसे डिमांड। तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कुफार जो होते हैं वो तो मुकल्लफ बिरफुरू यानी नमाज रोज़ा और अहकाम शरिया के मामूर होते ही नहीं है। तो फिर इस आयत से तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हैं मामूर, यानी इसके मुकल्लफ हैं। तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फिर क्या वजह है, तो फरमाते हैं कि क्योंकि जहन्नुम में असल में दो चीज़ें होंगी, ठीक है, एक होगा अजाब और दूसरा होगा शिद्दत अजाब। यानी क्या मतलब कि जिस तरह जन्नत में भी दो चीजें होंगी, ठीक है ना, यानी जन्नत में भी यही दो बातें होती हैं, एक होती है दुखूल फिल जन्ना, जन्नत में दाखिल होना, और दूसरा क्या होता है कि जन्नत जन्नत में आपको कौन सी पोजीशन अलॉट होगी, कौन सा प्लॉट अलॉट होगा, है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, एक तो दाखिला है, दाखिले के बाद फिर अलॉटमेंट होती है ना। तो वो दाखिला किस बेसिस पर होता है, ईमान की बेसिस पर, और प्लॉट अलॉटमेंट किस बेसिस पर होती है, अमाल की बेसिस पर, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जहन्नुम का भी यही मामला है कि जहन्नुम में दाखला जो है, दुखूल फिन्नार, वो तो कुफर की वजह से है, लेकिन वहां पे कौन सी वाली कोठरी अलॉट होगी, कौन सा वाला जो है वो दर्जा अलॉट होगा जहन्नुम का, वो आमाल के ना करने की वजह से, ठीक है, या जो बुरे आमाल हैं उनको करने की वजह से। ये बात क्लियर है सबको? ये बात सही है? जन्नत में और जहन्नुम में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों में दो दो चीजें, दुखूल अलग चीज होती है और मुकाम की अलॉटमेंट अलग चीज होती है, ठीक है। तो जन्नत में भी ऐसा ही है और जहन्नुम में भी ऐसा ही है। तो वही फरमा रहे हैं कि दो चीजें होती हैं, एक अजाब और दूसरा शिद्दत अजाब, क्योंकि जिस दर्जे में आपको रखा जाएगा तो हर दर्जे की शिद्दत अलग है, ठीक है। बस मुमकिन है कि मजमुए आमाल मस्कूरा, मजमुआ मजमुआ आमाल मस्कूरा, यानी ये जो आमाल जिक्र किए गए ना कि जी नमाज नहीं पढ़ते थे, जक़ात नहीं देते थे, और जो है वो यानी दीन का मजाक उड़ाने वालों की मदद किया करते थे, ठीक है, तो ये तो आमाल मस्कूरा हुए ना जो यहाँ पे जिक्र शुदा हैं। तो ये जो आमाल मस्कूरा हैं ये सबब हों मजमुए अजाब और शिद्दत अजाब, यानी टोटल जो उनको वहां पे अजाब मिल रहा है ना, तो ये उस उसके मजमुए और शिद्दत का सबब बनते हैं, ठीक है। कि इस तरह कि कुफर और शिर्क तो सबब हुआ ताजीब का, ठीक है, अजाब का सबब हुआ, और तरके सलात वगैरह सबब हुआ ज्यादा ताजीब का, यानी कितना ज्यादा अजाब मिलेगा उनको, कितनी शिद्दत होगी उनके अजाब की, ये डिपेंड करेगा उनके आमाल के तर्क के करने की बुनियाद पर। तो फरमाया कि और कुफार के गैर मुकल्लफ बिलफुरू होने के मानी ये कहे जाएंगे, भाई कोई कहे ना भाई कुफार तो है ही नहीं मुकल्लफ इन आमाल के, तो उसको फिर इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि इन फुरू पर नफ्से ताजीब नहीं होगी, ठीक है, यानी नफ्से ताजीब को आप डिफाइन कर सकती हैं दुखूल फिन्नार, ठीक है। दुखूल फिन्नार जो है ना वो इन अमलों की वजह से नहीं, या इन अमलों के ना करने की वजह से दुखूल फिन्नार नहीं होगा, ठीक है। तो इन फुरू पर नफ्से ताजीब ना होगी, और ज्यादा ताजीब इसलिए हो सकती है कि उसूल के जिमन में फुरू भी तबान आ ही जाते हैं, इसलिए ज़िमनन मुकल्लफ होना ज्यादती अजाब का सबब हो सकता है, ठीक है। यानी असलन तो वो मुकल्लफ नहीं होते इन अमाल के, लेकिन कुफर के ज़िमन में या कुफर के तहत वो फिर इन अमाल के भी ना करने की वजह से शिद्दत अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर इबारत मुश्किल है, पता नहीं किसके समझ में आई किसके नहीं समझ में आई, लेकिन जो दूसरे अंदाज से साहिब ने समझाया ना कि दुखूल एक अलग चीज होती है और वहां पर अलॉटमेंट कहाँ पर आपको मिलेगी ये अलग चीज होती है, ठीक है। तो जन्नत की मिसाल समझना ज्यादा आसान है, सही है, लेकिन जहन्नुम की मिसाल जो है वो उसी को आप रिवर्स कर लें, उल्टा कर लें उसी को आप, ठीक है। किसी को सवाल है इसके ऊपर? क्लियर है वैसे सबको? ये पूछे आपसे कोई चीज? चले इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो बहरहाल तो फरमाया कि उसूल के जिमन में फुरू भी तबअन आ ही जाते हैं, ठीक है, इसलिए जिमनन मुकल्लफ होना ज्यादती अजाब का सबब हो सकता है। मिसाल के तौर पर नमाज तो चले कोई भी काफिर नहीं पढ़ेगा, एक जहन में सवाल हो सकता है ना कि भाई लम नको मिनल मुसल्ली, तो वो तो सारे ही काफिर, कोई काफिर नमाज पढ़ ही नहीं सकता, अगर पढ़ेगा भी तो ईमान के ना होने की वजह से उसकी नमाज तो काउंट ही नहीं होगी। तो लम नको मिनल मुसल्लीन में तो सारे काफिर आ गए, ठीक है, लेकिन गरीबों की मदद करना है ना, गरीबों की मदद करना एक ऐसा काम है कि जो कि काफिर करते हैं, बहुत सारे काफिर करते हैं, है ना। बिल गेट्स फाउंडेशन एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इंडिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर खर्च करते हैं, है ना। तो हालांकि उनके पास ईमान तो नहीं है, उसी तरह जितने बिलियनियर्स हैं ना दुनिया के अंदर, ट्रिलियनियर्स और बिलियनियर्स, इन सब की मिलियंस में चैरिटी होती है, मिलियंस में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। तो ये काम तो काफिर करते हैं ना, ठीक है। तो हर काफिर नहीं करता, कुछ काफिर ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ही खाना खिलाने के खिलाफ है, बिल्कुल ही जो है वो ये काम नहीं करते, ठीक है। तो वो फिर लम लकुन उतरमुन मिस्कीन के अंदर आ जाएंगे। उसी तरीके से जो इस्लाम को मिटाने की कोशिशें हैं, ये हर काफिर तो नहीं करता, है ना। हर काफिर करता है ये काम, आजकल बहुत सारे काफिर कर रहे हैं, लेकिन वरना तो नहीं करते ना। बहुत सारे काफिर इंडिया वालों को तो तजुर्बा भी है इस बात का, बल्कि इवन पाकिस्तान में भी काफिर तो रहते हैं, हिंदू वगैरह तो रहते हैं। तो भाई हर कोई बैठ करके तो थोड़ी इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग कर रहा होता है। तो जो इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग कर रहा होता है, जो मुसल यानी इबताले दीन की मेहनतों के अंदर लगा हुआ होता है, तो उसके ऊपर ये बात सादिक आ जाएगी, उसको फिर एक्स्ट्रा अजाब होगा जहन्नुम के अंदर, जो कि दूसरे काफिरों को वो एक्स्ट्रा अजाब नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये चंद मिसालें भी मिल गई हमें, ये बात अब इंशाल्लाह क्लियर होगी। अच्छा आगे क्या फरमाया कि वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फमा तनफउहुम शफाअतुश शाफईन। फिर नफा नहीं पहुंचाएगी उनको शिफात करने वालों की शिफात करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफा ना देगी, और इस अदम नफा का तहक्कुक अदम शिफात के तहक्कुक से होगा, यानी शिफात ही नहीं होगी। अदम का मतलब क्या होता है? एब्सेंस, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, नॉन एग्जिस्ट यानी गैर मौजूदगी, किसी काम किसी चीज का मौजूद ही ना होना, उसको कहते हैं अदम, ठीक है। जैसे किसी को किसी के ऊपर एतमाद नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? अदम एतमाद, राइट, एब्सेंस ऑफ एतमाद, ठीक है। तो क्योंकि शफाअत करने वाले कोई नहीं होगा, तो जाहिर है फिर उनको किसी ऐसी चीज से कैसे नफा पहुंच सकता है जो कि उनके लिए मौजूद ही ना हो, ठीक है ना। तो यही उन्होंने जुबान में समझाया इसको। अच्छा जी आगे क्या फरमाते हैं कि यानी कोई उन काफिरों की शफाअत ही ना कर सकेगा, बिकौलिही तआला फमा लना मिन शाफिईन, ठीक है। कि अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया ना कुरान के अंदर कि ये लोग कहेंगे, काफिर लोग जो जहन्नुम में होंगे वो कहेंगे कि हमारे लिए तो कोई शफाअत करने वाला है ही नहीं, ठीक है। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकेगा, ठीक है। वो जो सूरह अम्मा यतसालून की आयत है ना, इसका आखिर में क्या तर्जुमा है कि कोई कलाम नहीं कर सकेगा अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर। और तो शफाअत तो लोग करेंगे लेकिन अल्लाह की मर्जी से ही करेंगे, तो इनके लिए फिर इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। हो सकता है किसी का कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो, वो चाहे कि उसके लिए शफाअत करे, है ना, कोई ईमान वाला जन्नत में जाने वाला हो, और वो कहे कि भाई मैं उस अपने वालिदैन की अपनी औलाद की शफाअत करना चाहता हूँ, लेकिन उसको इजाज़त नहीं मिलेगी शफाअत करने की। आगे उनके एराज पर तकरीर है कि जब कुफ्र व एराज की बदौलत उनकी ये गत बनने वाली है, यानी उनके साथ इतना बुरा हशर होने वाला है कि एक तो सजा अलग होगी और फिर कोई उनको उससे बचाने वाला ना होगा, तो उनको क्या हुआ कि इस नसीहत यानी नसीहत कुरानी से रू गर्दानी करते हैं। क्योंकि उनके सामने जब ये मजामीन रखे जाते थे ना काफिरों के सामने, तो एक तो नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत और अमानत ये उनको पता होती थी, है ना, कि ये तो सच्चे हैं, ये तो झूठ बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सदाकत और अमानत जो होती है ना, वो उनको बता रही होती थी कि ये जो जहन्नुम के हालात बताए जा रहे हैं ये झूठ नहीं हो सकते, क्योंकि ये शख्स जो है ना ये कभी झूठ नहीं बोलता, सही है। दूसरी बात कि कि कुरान का अपना एजाज, कुरान की अपनी जो अरबी जुबान होती थी ऐसी जबरदस्त होती थी कि ये लोग उसके ऊपर ना यानी डाउट नहीं कर सकते थे कि भाई ये कुरान जो है ये कोई इंसानों का बना हुआ भी हो सकता है। बोलते थे वो तो एक अलग बात थी, वो तो ऊपर ऊपर से बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो इंसान का कलाम है, ये तो शेर व शायरी है, ये तो फलाना है ढिमकाना है, राइट। लेकिन अभी हमने पढ़ा ना पीछे भी वो जो अबू जहल और वलीद का वाकया, कि कुरान सुन करके इनको यकीन हो जाता था कि ये इंसान का कलाम नहीं है भाई, ये अल्लाह का कलाम है, ठीक है। लेकिन यानी उनको पता होता था कि कयामत में ये सब कुछ होने वाला है, हमारे साथ सब कुछ होने वाला है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोलते और ये कुरान जो है ये इंसान का कलाम नहीं है, ठीक है। लेकिन इंसान की जो जिद होती है और अनानियत होती है ना, ये ऐसी गालिब आ जाती है उसके ऊपर कि अकल से वो एक बात को समझ रहा होता है लेकिन फिर भी मानने से इनकार कर देता है, ठीक है, फिर भी मानने से इनकार कर देता है। तो इसी वजह से ना जो कल सुभान अल्लाह आप में से अक्सर के जो हस्बैंड्स की क्लास है आलिम सालिक तफसीर क्लास सूरह निसा के अंदर यही मजामीन चल रहे थे बिल्कुल कल रात को, ठीक है, कि भाई जो गुनाह करता है ना तो वो जहालत में गुनाह करता है और जिसने भी जहालत में गुनाह किया तो अल्लाह ताला के जब वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला के जिम्मे है उसकी तौबा को कबूल करना। तो जहालत का क्या मतलब था, जहालत का मतलब ये नहीं था कि उसको पता नहीं था कि वो ये गुनाह जो कर रहा है वो गुनाह होता है, उसको पता ही नहीं था तो उसने ऐसे ही लाइल्मी के अंदर गुनाह कर लिया, नहीं, जहालत में गुनाह करने का ये मतलब नहीं है, बल्कि जहालत में गुनाह करने का मतलब ये है कि उसकी अकल के ऊपर जानने समझने के बावजूद पर्दा पड़ गया। तो जहालत का मतलब हिमाकत है, जहालत की तफसीर क्या है, हिमाकत, बेवकूफी, कि जानता था कि अगर करेगा तो नुकसान होगा, उसको दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी, आखिरत में भी जिल्लत मिलेगी और अजाब मिलेगा, लेकिन ऐसा गालिब आ जाता है उसके अकल के ऊपर उसके जज्बात, जज्बात ऐसे गालिब आ जाते हैं कि अकल पे पर्दा पड़ जाता है और जिद और अनानियत जो है ना, ना मानने वाली जो एक अंदर से एक होती है ना, एक फलंत्रु अंदर होता है, अंदर एक वायरस होता है, ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस होता है, ठीक है, कोरोना तो कोई चीज ही नहीं है उसके सामने, है ना। तो ऐसा जो वायरस होता है ना अंदर मौजूद, तो फिर वो सब कुछ जानने बूझने के बावजूद इनकार के ऊपर इंसान को आमादा कर देता है, ठीक है। तो इन काफिरों के साथ भी यही यही मामला था कि इनको पता, जब ये सारी चीजें थी ना पता थी लेकिन नहीं मानते थे, उसी पर तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ना कि भाई किनको क्या हुआ है कि इस नसीहत से रूगर्दानी करते हैं, है? हालांकि पता है उनको कि ये नसीहत जो है वो झूठी नहीं है। फमा लहुम अन तज़किरते मुरिदीन, ठीक है, अच्छा ये पढ़ने से पहले आपका ये सवाल पढ़ लेते हैं कि JDC NGO है कराची में, उसका चेयरपर्सन शिया है, जफर अब्बास नाम है, आजकल जैसे बहुत फलाही काम हो रहे, राशन की तकसीम हो रही है, क्या ये सही है, दज्जाल फितना ना है ये, दज्जाली फितना ना है ये, क्योंकि ये शिया है और क्या लोग उससे शरीयत की तरफ नहीं जाएंगे, JDC जाफरिया डिजास्टर सेल। हाँ तो अकीदे की खराबी है, ठीक है, तो अब वो चाहे वो चैरिटी का काम करे या नमाजें पढ़े या जो भी काम करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो लोग जो हैं वो वही मुतासर होंगे ना कि जिनकी नस्बत नहीं होगी, बशायत के साथ नस्बत जिनकी मजबूत नहीं होगी, कच्चे होंगे बिल्कुल, है ना, अपनी चलाने वाले होंगे, तो वो फिर इसकी तरफ मायल हो जाएंगे और यही कहना शुरू कर देंगे क्या हो गया अगर शिया है तो, काम देखो कितना अच्छा कर रहा है ना। और असल तो यही होता है, कल हमारे आप ही के भांजे साहब बता रहे थे कि लोग उनसे पूछते हैं कि भाई तुम ये क्या पुरानी पुरानी किताबें जो है वो आलिम कोर्स के अंदर पढ़े चले जा रहे हो, कोई ऐसी किताब पढ़ो ना जिसके अंदर इंसानियत की खिदमत के बारे में बातें होती हैं, ठीक है, एज इफ के हमारे जो हदीस की किताबें हैं और आलिम कोर्स के अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें इंसानियत की खिदमत की कोई बात ही नहीं होती जैसे, लेकिन शैतान ने उनको क्या पट्टी पढ़ाई हुई है कि असल चीज इंसानियत की खिदमत है, अकीदे की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। तुम जो है वो अल्लाह का इनकार करो, तुम रसूल का इनकार करो, तुम सहाबा का इनकार करो, तुम आखिरत का इनकार करो, तुम कुरान के जो अहकाम हैं उनका इनकार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज तुम चैरिटी का काम किया करो। तुम करते हो चैरिटी का काम, बस ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोपेगेंडा है तो इसका शिकार वही होता है ना कि जो जिसका खुद अपना अकीदा कमजोर हो, है ना, जिसका अपना मामला उलमा और मशाइख के साथ खराब हुआ हुआ हो, कच्चा हुआ हुआ हो, तो फिर वो इस दज्जाली फितने का शिकार हो जाएगा। यही तो बात समझाने की बार बार कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह ताला सबके ईमान की हिफाजत फरमाए इन चीज़ों से, जो है ना, ये यही मसला है ना कि भाई इस दौर के अंदर तो अब आप यानी इतना मुश्किल है इस वक्त लोगों को समझाना, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब लोग आपको मारने पर उतर आएंगे अगर आप इस तरह की बातें उनसे करेंगे तो, है ना। तो ठीक है, आप मार खा लें या तो आप चुप हो जाएं, जाहिर मार खाने की कोई आपको शरीर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि जी मार खाना जरूरी है आपके लिए, तो अब क्या होगा, खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दुआई कर सकते हैं, फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो उसी तरह से अब ये तो शिया की बात कर रहे हैं ना, आप आगे तो कादियानी पीछे हैं इस काम के अंदर, क्या कादियानी भी बहुत, उनके पास भी बहुत माल और दौलत है, कनाडा से माल आता है, यूके से माल आता है, अमेरिका से माल आता है ना, वहां तो माल की कोई कमी नहीं है, तो माल तो बहुत है इनके पास चैरिटी का काम करने के लिए। इंडिया के अंदर तो खास तौर पर यही हो रहा होता है, पाकिस्तान में तो फिर जो है जरा कुछ इनके रास्ते पे बंद बांधने वाले लोग ज्यादा मौजूद हैं, इंडिया में तो और भी कम है मामला, तो वहाँ तो खूब चैरिटी का काम करते हैं ये लोग कादियानी। अच्छा, आगे फरमाया कि क्या हुआ कि इस नसीहत कुरानी से रूगरदानी करते हैं कि गोया वो वहशी गधे हैं, यानी जंगली गधे, वाइल्ड डोंकीज, जो शेर से भागे जा रहे हैं। इस तशबी में कई अमर की रियायत है, यानी बहुत सारे इसके अंदर ना मतालिब पोशीदा हैं इसके अंदर। अव्वल तो गधा बेवकूफ़ी और हिमाकत में मशहूर है, ठीक है ना, यानी एक नॉर्म है ये हर कल्चर के अंदर, गधा जो है ना वो यानी स्टूपिड किस्म का जानवर ही समझा जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर इस अंडरस्टैंडिंग को जो इंसानों के दरमियान राइज होती है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को अल्लाह ताला फिर इस्तेमाल करते हैं इंसानों को बात समझाने के लिए। ये नहीं है कि भाई अल्लाह ताला कहे नहीं ये तो मेरी, ये तो मेरा मेरी मखलूक है और तुम इसको गधा, तुम इसको बेवकूफ़ समझते हो, तो मैं तो इसको बेवकूफ़ नहीं समझता, ठीक है, इस तरह से नहीं। बल्कि चूंकि ये चीज़ ये एक आम है, बल्कि गधे की तो आवाज़ के बारे में भी कुरान फरमाया कि जो सबसे बुरी आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना। तो दूसरे यानी एक तो ये वजह होगी ना कि गधा जो है वो बेवकूफ़ी और हिमाकत के अंदर मशहूर है, कि यानी उसकी अकल पे जो है वो सबसे ज़्यादा पर्दा पड़ा हुआ होता है, क्योंकि बेवकूफ़ की यही डेफिनेशन होती है। तो इसी तरीके से जो काफिर होते हैं वो इंतहा दर्जे के बेवकूफ़ होते हैं। दूसरे उसको वहशी फ़र्ज़ किया, वहशी गधा भी कहा उसका, जिसको गोरखर कहते हैं। गोरखर तो फारसी का लफ्ज़ है, उर्दू के अंदर इसके लिए भी गोरखर, गोरखरी का प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उससे ज़्यादा वाकिफ नहीं है। तो ये एक्चुअली जो अंग्रेजी में जीब्रा होता है, जीब्रा, तो वो वहशी गधा यहाँ पर मुराद है, जिसको गोरखर भी कहा जाता है। तो जिसको गोरखर कहते हैं कि वो जो जो चीज़ें डरने की नहीं होती उनसे भी बिला वजह डरता और भिदकता भागता है, क्योंकि जो पालतू गधे होते हैं जो घरों वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो तो खड़े रहते हैं, ठीक है, वो तो इंसानों से डरते वरते नहीं, उनको तो आदत हो जाती है ना, लेकिन जो जंगल के अंदर रहते हैं ना तो वो फिर बहुत ज्यादा भिदकता भागता, क्योंकि वो आज़ाद भी होता है वो। तीसरे शेर से उसका डरना फर्ज किया कि इस सूरत में उनका भागना इंतहा दर्जे का होगा, यानी अपनी जान बचाने को जो वो भागते हैं ना, कि शेर ने तो उनको छोड़ना नहीं होता, ठीक है। तो इस भागने के असबाब में एक सबब ये भी है कि ये लोग इस कुरान को बज़्म खुद हुज्जियत में काफी नहीं समझते, ठीक है, कि बज़्म खुद हुज्जियत में काफी नहीं समझते, यानी कुरान जो है ना ये खुद भी एक हुज्जत है इनके खिलाफ, कुरान के अंदर खुद भी इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर ना इनसे ईमान को लाना डिमांड किया जा सकता है, ठीक है, कि कुरान को तुमने, तुम अरबी जुबान जानने वाले थे, तुम्हारे ऊपर ये, तुम्हारी कौम के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ था, अगर तुम नबी अलैहिस्सलाम को नहीं भी मानते कि तुम इनको इनको समझते नहीं हो किसी काबिल, कि भाई वो इतने अमीर नहीं है, वो जो है वो हमें सबसे ज्यादा ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो भाई जो कुरान की इबारत वो तुम्हें बता रहे हैं वो इबारत तो खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, ठीक है ना। वो इबारत शुड बी इनफ टू कन्विंस यू, ठीक है। तो ये जो है ना फिर वहशी गधे की तरीके से हिदायत से दूर भाग रहे होते हैं, जैसे कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कैसी अजीब अल्लाह ताला ने मुशाबहत दे करके उनको डिस्क्राइब किया है कुफार को। अच्छा फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बल युरीदु हाँ फर्रत मिन कसवरा के भागे हैं ये गुल मचाने से। अच्छा ये भी आगे मारूफ मसाइल में देखेंगे। बल युरीदु कुल्लु इम मिनहुम, बल्कि उनमें से हर बंदा चाहता है युता सुहफम मुनशरा, के उसको मिले खुले हुए सहीफे। हर एक को अल्लाह ताला की तरफ से पर्सनल मैसेज आना चाहिए, डायरेक्ट मैसेज आना चाहिए, गोया के हर बंदा ही अल्लाह का नबी बन जाए। अल्लाह जो है वो डायरेक्ट मैसेज तो नबी को भेजते हैं, तो ये क्या चाहते थे, नहीं हमारे पास भी अल्लाह ताला का डायरेक्ट मैसेज आए। ये क्यों वास्ते में इस आदमी को क्यों इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला, है ना, ये इस किस्म का एतराज करते थे। तो खुलासे तफसीर में लिखते हैं कि उनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसको खुले हुए आसमानी नवशते दिए जाएं, जैसे कि दुर्र मंसूर में कतादा से मरवी है कि बास कुफार ने आप से कहा कि आप सर कि अगर आप सर चाहते हैं कि हम आपका इत्तबा करें तो खास हमारे नाम आसमान से ऐसे नवशते आए जिनमें आपके इत्तबा का हुक्म लिखा हुआ हो, ठीक है। नाम ले ले करके अल्लाह ताला हर एक के लिए चिट्ठी भेजे, वाह कौली ताला हत्ता तुनज्जिला अलैना किताबन के नाजिल हो हमारे ऊपर किताब नकरऊहू, हम उसको पढ़ें और हम उसको पढ़ें, यानी डायरेक्ट हमारे ऊपर मैसेजेस आए। और मुनशरा का बढ़ाना तौजीह मकसूद के लिए है, यानी मजीद जो है वो वजाहत करने के लिए मकसूद की, यानी जैसे मामूली खत होते हैं कि खोले जाते हैं और पढ़े जाते हैं, ऐसे ही नवशते हमारे पास आने चाहिए। आगे इस बेहूदा दरख्वास्त का रद, यानी ये जो उनकी दरख्वास्त है ना, यानी जो उनकी डिमांड है, ये बहुत ही बेहूदा किस्म की डिमांड। फरमाते हैं कल्ला बल्ला यखाफून अल आखिरा, हरगिज नहीं। कल्ला का तर्जुमा हरगिज नहीं हो सकता कि हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि ना इसकी जरूरत और ना इन लोगों को इसकी लियाकत, बिलखसूस इस वजह से कि इस दरख्वास्त का सबब ये नहीं है कि दिल में उनके इरादा हो कि अगर ऐसा होगा तो इत्तबा कर देंगे, ठीक है। यानी अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाले हैं ना, तो ये लोग जो अपनी जुबानों से कहते थे कि हमारे ऊपर डायरेक्ट मैसेज आए, तो ये जो कह भी रहे होते थे ना, ये भी इस इरादे से नहीं कह रहे होते थे कि अगर आ गया तो हम मान लेंगे, बल्कि इनका इरादा अभी भी ना मानने का ही था, गोया के इस्तेहजान कह रहे होते थे नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में, और वही हठधर्मी की वजह से ये बातें कह रहे होते थे, मानने के इरादे से इवन ये बात भी नहीं कह रहे होते, ठीक है। तो इस वजह से ना इनके ये जो दरख्वास्त थी ये अल्लाह ताला ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दी, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बल्कि सबब ये है कि ये लोग आखिरत के अजाब से नहीं डरते। बल्ला यखाफून अल आखिरा कल्ला इन्नहू तज़किरा, इसलिए हक की तलब नहीं है और ये दरख्वास्तें महज जिद और हठ धर्मी से, ठीक है ना। बात असल में वही जो होता है ना आखिर में जाकर के जो बात यहाँ पे फंसती है, और जो हर चीज का जो समझने के कॉज बनती है ना, सारी गुमराही की कॉज, सारी जो है वो यानी अजाब का जो वजह बनती है वो यही बनती है, जिद और हठ धर्म, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ना हुज्जत तमाम कर देते हैं, ये अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि भाई मैं तो पैगाम पहुंचवाऊंगा, है ना, मैंने रसूलों के जरिए से पैगाम पहुंचाना है, मैंने किसी ना किसी जरिए से पैगाम पहुंचवाना है। तो जब पैगाम पहुंचवाने का काम अल्लाह ताला की तरफ से पूरा हो जाता है, और अल्लाह ताला के कामों के अंदर कोई कोताही नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो फिर आगे क्या चीज रह जाती है कि भाई बात समझ में नहीं आई थी इस वजह से नहीं माना, है ना, या कोई तकलीफ थी, कोई मजबूरी थी, बीमारी थी, इस वजह से नहीं माना, है, ये तो फिर रीजंस रह ही नहीं जाती हैं। फिर कौन सी रीजन रह जाती है? सिर्फ एक रीजन रह जाती है ना, फिर जिद और हठ, और कोई रीजन नहीं रह जाती है। ठीक है, क्योंकि इंसान इंसान को थोड़ी है, यहाँ पर मसला इंसान को थोड़ी है कि जी इंसान ने काम पूरा नहीं किया और इंसान से गलती हो गई होगी कि वो काफिरों तक जो है वो दीन इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा सका, तो बेचारे काफिर इस वजह से जो है वो इस्लाम से महरूम रह गए। ये तो इंसानों का मसला ही नहीं है कोई, ये तो परवरदिगार का काम है। ठीक है, तो परवरदिगार जो है वो ये काम मुकम्मल करके रखते हैं, तो फिर आगे से फिर काफिरों के पास और कोई एक्सक्यूज ही नहीं जाता, तो फिर सिर्फ और सिर्फ जिद और हठधर्मी रह जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से ना हम जब अपनी इस्लाह की बात करते हैं ना, तो छोटी मोटी जो निक्की निक्की सी इस्लाहों की हम फिक्र कर भी लेते हैं ना, खाम खा की अपनी तरफ से भी ख्वाब देख देख करके इस्लाहों की बातें करते हैं। ठीक है भाई, असल जिस चीज़ की हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है ना, वो ये जिद है, जिद और हठधर्मी। ठीक है ना, आपने बाकी सारी चीज़ों की इस्लाह कर ली, भाई पहले इस तरह से तजवीद से कुरान नहीं पढ़ते थे, आपने तजवीद से पढ़ना सीख लिया, बड़ी अच्छी बात करी भाई। ठीक है ना, नमाज पढ़ने में सुन्नतों का नहीं पता था, आपने नमाज से सुन्नतों को सीख लिया, फलानी चीज़ का नहीं पता था, उस चीज़ को सीख दिया, इस चीज़ को सीख दिया, उस चीज़ को सीख दिया, फलाना कोर्स पढ़ लिया, वो वाली किताब पढ़ ली, वो वाला जो है वो आपने अमल कर लिया, वो वाला वजीफा पढ़ लिया, है ना, बहुत सारी इस्लाह हो गई आपकी। लेकिन अगर अंदर जिद और हठधर्मी अभी तक मौजूद है, ठीक है, तो फिर ऐसी इस्लाहों का जो है फिर ज्यादा फायदा नहीं रहता, फिर वो आखिर में जाकर के वो जिद और हठधर्मी जो होती है ना, वो फिर इंसान को फंसाई फंसा करके ही छोड़ती है। तो जो असल इस्लाह होती है वो इस जिद और हठधर्मी की इस्लाह होती है। ठीक है, अगर इसकी तरफ हमारा हमारी तवज्जो ही नहीं है, इस वाली इस्लाह की तरफ, तो फिर क्या कर रहे हैं। ठीक है, हत्ता के अगर ये दरख्वास्तें बिलफर्ज पूरी भी हो जाएं, तब भी ये लोग इत्तबा नहीं करेंगे। लिकौली तआला वलौ नज़लना अलैका किताबन फी क़िरطاسٍ फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन। क्या अल्लाह ताला ने अजीब, कि अगर हम इनके ऊपर ना एक क्या पार्चे में रख के या किसी वो किताब को जिस चीज के अंदर रख रख करके पेश किया जाता है, किरतास के अंदर, है ना, कोई अच्छे से यानी क्या कहते हैं उसको जिसके अंदर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जुजदान या ऐसी कोई चीज, तो इसमें रख करके अगर इनके हुजूर किताब पेश भी की जाती है ना, और ये फिर अपने हाथों से उसको लम्स भी कर लेते हैं। लम्स का मतलब क्या होता है? छूना, हाथों से उसके अपने हाथों को उस किताब के ऊपर फेरना, यानी फिजिकली उस किताब को अपने हाथों से छू लेते, पढ़ लेते, उसको देख लेते सब कुछ, तो फिर क्या करते? लकाला, जरूर बिल जरूर ये कहते, अल्लज़ीना कफरू जिन लोगों ने कुफर किया, क्या कहते? इन हाजा इल्ला सिहरुन मुबीन, ये कुछ नहीं है सिवाय खुला जादू है। ठीक है, ये कुछ नहीं है सिवाय खुला जादू है। ठीक है, कैसी इबरत अंगेज हालत अल्लाह ताला ने बयान करी है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मसला क्या होता है? अंदर का वायरस। ठीक है, ये जिद और हठधर्मी का वायरस। ठीक है ना, ऊपर से फिर ये कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाता तो फिर वो ईमान लेकर के आ जाते, और आप अगर उनके सामने लेट जाते हैं ना तो फिर तो वो जरूर ईमान लेकर के आ जाते, अगर आप जो है ना वो उनके सामने बिछ जाते हैं ना तो फिर तो वो जरूर आपकी बात मान लेते, है ना, ये सारी चीजें होती नहीं। ठीक है भाई, जो अल्लाह ताला ने आपको करने को कहा है आप वो काम करें, जैसे करने को कहा है आप वो काम वैसे करें। ठीक है, बाकी इनका जो वायरस है, अगर ये वायरस की इस्लाह नहीं करेंगे तो ये नहीं लेकर के आएंगे ईमान, इसका आपके अमाल से आपके अफाल से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो आगे बतौर नतीजे के इसका रद्द और उस पर जजर है कि जब इस दरख्वास्त का बेहुदा होना साबित हो गया तो हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि ये कुरान ही नसीहत के लिए काफी है। दोबारा अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला इन्नहु तज़किरा, कि ये जो कुरान है ना, इन्नहु बेशक ये तज़किरा है, ये नसीहत के लिए काफी है, दूसरे सहीफों की हाजत नहीं है। है, इधर उधर जो है ना तुम्हें इसके अंदर फिर यानी पैच पैचेस लगाने की दूसरी तरफ से जरूरत नहीं है। हाँ, इसी को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, इसी की तफसीर कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन दूसरे जो पुराने सहीफे हैं जिनका कि तुम्हें पता भी नहीं कि क्या चीज़ उसमें से ठीक रह गई है, क्या चीज़ गलत कर दी गई है, तो उनके पैचेस लगाने की तुम्हें इसके अंदर जरूरत नहीं है। सो इस हालत में क्या क्या नतीजा निकलता है कि फमन शाह अज़करा, जो चाहे वो इससे नसीहत पकड़ ले, वमा यस्कुरून इल्ला अय्यशा अल्लाह। तो कहते हैं कि जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे और जिसका जी चाहे ना करे, ठीक है ना। इन दी एंड रियलिटी तो यही है कि भाई हम आपके ऊपर इसको चिस्पा तो नहीं कर सकते ना, आपको पकड़ पकड़ के जो है मुसलमान तो नहीं कर सकते, ईमान तो नहीं आपके दिल के अंदर हम दाखिल कर सकते, तो आपकी मर्जी है आप करें ना करें, ठीक है। हमारे ऊपर एहसान मत मत जतलाएं आप ईमान लाने के बाद, ठीक है कि भाई हम आप पे एहसान कर रहे हैं मुसलमान होकर के, अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं, तो जो नहीं करेगा तो फिर जहन्नुम में जाओ। हम कहते हैं ना भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, है ना। तो उसी को फरमा रहे हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह रहे हैं कि जो जिसका जी चाहे ना करे जहन्नुम में जाए, हमको कोई जरूरत नहीं है कि मतलूबा किस्म के नवश्ते नाजुक करें, ठीक है। तो फरमाया कि और कुरान की तस्करा यानी हिदायत होने में इससे शुबा ना किया जाए कि बाज़ लोगों को इससे तस्करा व हिदायत नहीं होती, ठीक है। कि भाई अगर ये यानी हिदायत की किताब है, किताबुल हिदाया और किताबुल तस्किरा, तो फिर इतने सारे लोगों को इससे हिदायत क्यों नहीं मिलती भाई, और यानी नसीहत क्यों नहीं हासिल होती, ठीक है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि बात ये है कि कुरान गो फी नफ्स ही तस्किरा है, ठीक है, यानी इन ऑफ इट सेल्फ, यानी वो खुद तो एक नसीहत है, ठीक है। लेकिन ये नसीहत किस पे असर करेगी किस पे असर नहीं करेगी ना, तो वो तो फिर यानी अल्लाह ताला की मर्जी पर भी मौकूफ है, ठीक है। कि बिदून चाहे बिदून खुदा के चाहे ये लोग नसीहत कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। वमा यस्कुरूना इल्ला अय्यशा अल्लाह, ठीक है। हुवा अहलु तक्वा व अहलु मगफिरा, कि अल्लाह ताला ही तकवा का अहल है और अल्लाह ताला ही मगफिरत का अहल है, यानी अल्लाह ही से डरना चाहिए और अल्लाह ही जो है मगफिरत करने वाला है। तो अब उसकी तफसीर में फरमा रहे हैं कि इस ना चाहने में बाज़ हिकमतें हैं, कि भाई वही बात कि भाई जब अल्लाह ना चाहे तो फिर बंदे का क्या कसूर कि वो मुसलमान ना बना, ठीक है। तो उसको यानी ये जो एतराज़ उठाया जाता है मुर्तदीन की तरफ से भी उठाया जाता है, एक्स मुस्लिम जो आजकल बहुत बड़ा एक यानी बहुत बल्कि बहुत बड़ा तो खैर नहीं है, तादाद के अतबार से तो शायद इतने बड़े ये लोग नहीं है एक्स मुस्लिम वाले, लेकिन शोर के हिसाब से ही बहुत बड़े, शोर बहुत मचा रहे हैं ये लोग, ठीक है। बिकॉज इंटरनेट इनके हाथ में है और ये पूरी जो मुसलमान कौम है वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद होती है, तो इस वजह से जो एक्स मुस्लिम वाले हैं ये बहुत शोर मचाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना ये फिर बहुत ज्यादा तहकीक कर चुके होते हैं, बहुत इन्होंने कुरान को पढ़ा होता है, बहुत इन्होंने जो है वो हदीसें भी पढ़ी होती हैं और दूसरों के किताबें भी पढ़ी होती हैं, यानी अच्छा खासा यानी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये जाहिल नहीं होते बिल्कुल, ठीक है। तो फिर ये ऐसी ऐसी जो आयात उनको मिलती हैं, कोई हदीस मिलती है, ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं फिर जो दीनदार मुसलमान होते हैं ना उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनको बदगुमान करने के लिए। मिसाल के तौर पर अभी एक हदीस जो है वो बुखारी शरीफ की हदीस है, उसको ये एक्स मुस्लिम वाले फैला रहे हैं। वो क्या है भाई कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर ताऊन और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। मदीना मुनव्वरा में ताऊन यानी जिसको प्लेग कहा जाता है, प्लेग दज्जाल दाखिल नहीं हो सकते। अब ये हदीस बुखारी शरीफ में है, ठीक है ना। एक्स मुस्लिम्स ने बुखारी शरीफ से इस हदीस को निकाल करके लोगों को भेजना शुरू किया या अपने फोरम्स पे उसको डाला होगा, अपनी वेबसाइट्स पे डाला होगा कि देखो 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 है सऊदी अरब के अंदर सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो तो मक्का मुकरमा और दूसरे नंबर पर मदीना मुनव्वरा के अंदर है ना, बाकी शहरों के अंदर तो सारे कम है, रियाज उसके बाद तीसरे नंबर पे रियाज आता है, ठीक है ना। तो ये तो हदीस जो है, ये तो सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है ना। तो फिर ये कैसे हो गया भाई, है ना। और फिर जाहिर है कि फिर हमारे लोगों के पास तो इसका कोई जवाब नहीं होता। और कितने होते हैं जो कि जा करके जो है वो किसी सही जगह पे किसी सही इल्म वाले से जा करके इसको पूछेंगे, ठीक है। तो इसको तो पढ़ते आप, आपको एक यानी शॉक लगता है ना कि हाँ देखो ये कैसे हो सकता है। तो क्या जवाब है इसका, किसी को पता है इसका जवाब? खैर वक्त की कमी की वजह से इसका जवाब ये है कि ताउन, जिसको अंग्रेजी में प्लेग कहते हैं, ये एक खास किस्म की बीमारी होती है, ठीक है, जिसके अंदर ना गिल्टी निकला करती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको, ग्लैंड जो निकलता है, मेलिग्नेंट ग्लैंड ग्लैंड होता है ना वो, जिसके अंदर के यानी जैसे कि ट्यूमर, जो जिस्म के अंदर ट्यूमर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, कैंसरस ट्यूमर होते हैं और दूसरे जो है वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर से जो है वो मौत वाकई नहीं होती, जो मेलिग्नेंट होते हैं वो फिर कैंसर का सबब बनते हैं और उससे फिर मौत भी वाकई हो जाती है। उसी तरीके से ताऊ जो है उसके अंदर एक गिल्टी निकलती है, ठीक है ना, एक ग्लैंड किस्म की कोई चीज जो है वो जिस्म में कहीं निकलती है तो गर्दन के साइड पर निकलती है, और वो मेलिग्नेंट होती है ना तो फिर उससे बंदे का इंतकाल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हदीस है ये उस ताउन की बात कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किस्म की जो मुतअद्दी बीमारी होती है जिसको के वबा कहते हैं, ठीक है ना, हर किस्म की वबा की इस हदीस में बात ही नहीं हो रही है, पहली बात है ना। तो कोरोना वायरस अगर वबा है भी, अगर WHO की खबरों के ऊपर आप ईमान ले आए और आप इसको वबा मान लें, ठीक है, तो भाई ये ताउन वाली वबा वबा तो है ही नहीं, पहली बात, पहली बात हो गई। दूसरी बात इसकी, दूसरा जवाब इसका ये है कि ताउन नहीं दाखिल हो सकता, इसका मतलब ये है ही नहीं कि ताउन ज्यादा कोई फर्द मदीना मुनव्वरा में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, एंटर हो सकता है, लेकिन इस हदीस का मफहूम ये है कि पूरी मदीना मुनव्वरा की आबादी ताउन का शिकार होकर के खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। यानी जैसे ताउन जिन जिन जगहों पे फैला है माजी में, ऐसी बहुत सारी बस्तियां जो है ना वो खत्म हो गई पूरी की पूरी ताउन की वजह से, ठीक है। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर ऐसा नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी मतलब डेफिनेटली आगे भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वबाई अमराज जो हैं ये पहले भी मदीना मुनव्वरा में आए हैं, सहाबा कराम के जमाने में भी आए हैं, उसके बाद भी आए हैं और अभी भी आया हुआ है, तो इसके अंदर परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी तफसील को किसको पता भाई, कौन बताएगा ये सारी तफसीलें, तो ये तो उलमा ही बता सकते हैं ना। तो जिनका ताल्लुक उलमा से होगा, जो इनसे जा करके अच्छी तरीके से इस बात को समझने की नीयत से पूछेंगे, तो उनको ये जवाब मिलेगा ना। इंटरनेट के बैठे के ऊपर जो बैठे हुए हैं और वहां पे जो है वो या तो इंटरनेट से इल्म हासिल कर रहे हैं या दीन इस्लाम का दिफा करने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो कैसे दिफा करेंगे, उनके पास तो दिफा करने के हथियार ही नहीं उनके पास, है ना। तो ये सारी हरकतें चल रही होती हैं। बहरहाल तो ये जो आयत है कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह या वमा यस्कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह, है ना, तो अब इसको भी एक्स मुस्लिम टाइप के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं कि भाई बंदे का क्या कसूर है, तुम्हारा खुद कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो फिर कोई भी ईमान नहीं लेकर के आ सकता, ठीक है। तो उसको फिर थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस ना चाहने में बाज़ हिकमतें हैं, लेकिन कुरान फी नफ्स ही तज़किरा ज़रूर है, बस इससे तज़किरा हासिल करो और खुदा की अताअत करो, ठीक है, क्योंकि वही है जिसके अज़ाब से डरना चाहिए और वही है जो बंदों के गुनाह माफ़ करता है। कक़ौली तआला इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाबी व इन्नहु लगफूरुर रहीम, ठीक है, यानी सज़ा देने में भी अल्लाह ताला तेज़ है और अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाले और रहमत वाले भी हैं, ठीक है। बाकी मारूफ मसाइल 16 के मिड से ही शुरू कर रहे हैं, 616, फमा तनफाउहुम शफाअतुश शाफीन, तनफाउहुम की ज़मीर उन मुजरमीन की तरफ राजे है जिनका जिक्र इससे पहली आयत में आया है कि उन्होंने अपने चार जराइम का एतराफ किया, ठीक है, लम नकुम मिनल मुसल्लीन व लम नकुम मिनल मिस्कीन, एक तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरे ये कि वो किसी मिस्कीन गरीब को खाना नहीं खिलाते थे, मुराद ये है कि गरीबों की ज़रूरियात पर खर्च नहीं करते थे, तीसरे ये कि अहले बातिल जो इस्लाम और ईमान के खिलाफ बातें करते या मासी व फवाहिश में मुब्तला होते हैं, ये भी उनके साथ लगे रहते थे, उनसे बेजारी का इजहार नहीं करते थे, चौथे ये कि कयामत का इनकार करते थे। ठीक है, तो हमारे दौर में ये जो इस्लाम और ईमान के खिलाफ बातें करने वाले कौन हैं, ये मीडिया सेंटर्स हैं, ठीक है ना, इल्ला माशाल्लाह, कुछ एक आध को छोड़ करके सारे जो है ना वो यानी विद अ वेंजेंस दीन इस्लाम के शायर और दीन इस्लाम के जो अफराद हैं, उलमा और मशायख, तो उनके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं हर वक्त, और कोरोना वायरस के जमन में तो उनको और बड़ा यानी एक ऐसा शोशा हाथ आया है, ठीक है, या हाथ क्या आया है, बल्कि ये जिनके ये पैरोकार हैं उन्होंने इसको क्रिएट भी किया, ठीक है, कि इस को बहाना बना करके इन्होंने अपने तोपों के जितने दहाने हैं ना वो उलमा के खिलाफ कर दिए, ठीक है, कि भाई क्या मुसीबत है, एहतियाती तदाबीर जो है वो जितनी हम कहते हैं उतनी क्यों नहीं करते, ठीक है, और बेचारे उलमा जो है वो उनके ऊपर इतना इतना फोर्स के साथ, क्योंकि ये मसला क्या है, ये इंसानी सेहत का मसला है ना, और जो है वो पूरी दुनिया से खबरें भी जो है वो दहशतनाक किस्म की आ रही हैं, किसी मुल्क के अंदर जो है वो रोजाना के हिसाब से 500 से ज्यादा बंदे मर रहे हैं, है ना, वैसे भी कोई तहकीक है नहीं कि जो 500 बंदे मर रहे हैं ना ये एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं या किसी और रीजन से मर रहे हैं, है ना, एक ये भी एक ओपिनियन है कि सारी की सारी जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ऊपर लगा दी गई हैं, तो जो दूसरे पेशेंट्स आते हैं ना जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं उनको केयर ही नहीं मिल रही होती, उनको केयर ही नहीं मिल रही होती तो वो मौत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उनको कहाँ से वेंटिलेटर मिलेगा जब कोरोना के पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको कहाँ से टाइम मिलेगा जबकि कोरोना के पेशेंट्स के लिए जो है वो सारे के सारे मसरूफ हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी जो जो डेथ्स हो रही है ना तो उन डेथ्स को भी कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो इस वजह से पिछले जुम्मे को इस आज ने बात समझाई भी थी कि आप किसी खबर के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये आमन्ना और सदकना कह करके इन मीडिया वालों की बातों पर, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे वो अमरीकी मीडिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी मीडिया हो, किसी चीज के ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते, ठीक है, किस चीज को क्या बना करके पेश किया जा रहा है, तो अब उन दहशतनाक खबरों को, ठीक है, चाहे वो सच्ची हैं झूठी हैं, उनको इस यानी इतना फोर्स के साथ जो है वो लाया गया है कि उलमा बेचारे बड़े बड़े मशाए जाहिर है कि वो इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि इंसानी जान का मामला है और हमारी शरीयत के अंदर दीन इस्लाम के अंदर इंसानी जान के लिए जो है वो बहुत कुछ करने के लिए कहा गया है, तो उलमा अनफॉर्चुनेटली मतलब उनकी कोई खराबी नहीं है इसके अंदर ये, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि वो डिफेंसिव पे चले गए, बैकफुट पे चले गए, ठीक है, और मजबूरन चले गए, वो कोई ये नहीं कि भाई कमजोरी की वजह से चले गए, ओवरऑल हालात ही इस तरीके के हैं, ठीक है, तो इस वजह से है ना फिर उनको और वो उन्होंने फिर उसको मौका समझा और जो है वो अच्छा ये 5 लोगों की जमात भी क्यों करते हैं और मस्जिद को जो है वो ताला क्यों नहीं डाला गया अभी तक और इंसानों की जानों से खेल रहे हैं, वही मस्जिद के बाहर पूरी की पूरी मार्केट जो होती है ना वो चल रही होती है, राइट, चीजें चल रही हैं, जिंदगी का कारोबार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एक जो मुसीबत पड़ी हुई है सारी की सारी नमाज के ऊपर मुसीबत पड़ी हुई है ना, तो अब जो मीडिया देखने वाले लोग हैं तो उनको तो यही एक एक रुख नजर आता है, ठीक है, तो जो लोग मीडिया को नहीं देखने वाले हैं वो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हालत में है, तो असल मसला फिर क्या है, मीडिया को देखना या मीडिया को ना देखना, भाई आप मीडिया को देख क्यों रहे हैं, क्या आपके लिए बदनजरी किस्म की कोई चीज गुनाह नहीं होती है, और जो आपके कानों के अंदर जो उस मीडिया आउटलेट से जो है वो खराफात पड़ रही होती हैं, म्यूजिक पड़ रही होती है और जो बेहयाई के अल्फाज पड़ रहे होते हैं, क्या आप इसको गुनाह नहीं समझते है? तो आप ये गुनाह के मुर्तकिब हो क्यों रहे थे, पहली बात, पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना आप क्यों उसके मुर्तकिब हो रहे थे, उसके बाद फिर अगर आप मुर्तकिब हो रहे थे तो और इसको आप गुनाह नहीं समझते थे, तो जाए जा करके फिर उन्हीं के साथ आपका हशर भी होगा, है ना, उन्हीं के साथ फिर आप जिंदगी भी गुजारें, उन्हीं के साथ जो है वो आपका क़यामत के दिन भी हशर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्हीं लोगों का जिक्र है कि ये लोग जो हैं वो उनके साथ हुआ करते थे, जो कि दीन इस्लाम की इब्ताल की मेहनतों के अंदर लगे रहते थे। ठीक है, तो खुद करना भी जरूरी नहीं है, बस उनका साथ ही, उनके साथ साथ लगे रहना और उनके जो है ना वो हर वक्त बातों को सुनते रहना, है ना, ये भी इंसान की। तो आपने सुना ही नहीं था ना, आपने मीडिया को, आपने घर में टीवी रखी हुई क्यों है पहली बात, और अगर टीवी टाइप की कोई चीज रखी है किसी और वजह से, तो फिर उसके ऊपर आप ये चीजें ना चलाया करें। नहीं, हैरान तो फरमाया कि एक तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरे ये कि वो किसी मिस्कीन गरीब को खाना नहीं खिलाते थे, मुराद ये है कि गरीबों की जरूरियात पर खर्च नहीं करते थे, तीसरे ये कि अहले बातिल जो इस्लाम और ईमान के खिलाफ बातें करते या मासी व फवाहिश में मुब्तला होते हैं, ये भी उनके साथ लगे रहते थे, यानी सुनते रहते थे उनको, उनके पास बैठे रहते थे, उनकी बातों को उनको ट्यून इन करके जो है वो उनके चैनल्स के साथ लगे रहते थे, उनसे बेजारी का इजहार नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा वैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह ये काम तो करते हैं, यानी सुनते भी हैं, मानते भी हैं, साथ साथ बुरा भला भी कहते हैं, तो ये तो हमारी एक पर्सनल नेशनल कैरेक्टरिस्टिक बन गई है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, उसी को हम बुरा भला भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे बुरा भला कहने से बेजारी नहीं होती, ये बेजारी नहीं होती, ये एक्चुअली मोहब्बत होती है। ठीक है, वही बात जो आप पहले भी सुन चुकी हैं कि हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब बैठे और उन्होंने दुनिया की बुराई करनी शुरू कर दी और खूब बुराई करी दुनिया की, तो राबिया बसरिया ने क्या क्या फरमाया था, यहाँ से उठ के चला जा, मुझे लगता है तुझे दुनिया से बहुत मोहब्बत है ना। तो हमारी जो 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 नफरत का इजहार होता है ना मीडिया वालों के बारे में, ये नफरत जो है ना, ये एक्चुअली मोहब्बत की अलामत होती है। ठीक है, तो बेजारी जो असल बेजारी है ना, वो तो इससे दूर रहना है, वो तो इससे अपने आप को काट करके रखना है, ये बेजारी होती है। ये नहीं कि देखे भी चले जा रहे हैं और जो है वो गालियां भी दिए चले जा रहे हैं। अच्छा, चौथे ये कि कयामत का इनकार करते थे। इस आयत से साबित हुआ कि ऐसे मुजरिम जो इन सब गुनाहों के मुर्तकिब हों जिनमें कयामत की तकजीब भी दाखिल है, जो अहम कुफर है, ऐसे मुजरिमों के लिए किसी की शफात नाफे नहीं है। ठीक है, तो शुरू की तीन जो चीजें हैं ना, वो ऐन कुफर में नहीं आती। ठीक है, यानी अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुन रहे हैं तो उससे आप काफिर तो नहीं हो जाते ना, यानी जो दीन इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं लेकिन काफिर आप नहीं हो रहे जब तक कि आप खुद ये काम ना करें। लेकिन कयामत का जो इनकार है, इससे तो ऐन कुफर है ना, बिल्कुल आप स्ट्रेट कुफर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये कुफार हैं, किसी काफिर की शफात करने की भी किसी को इजाजत नहीं होगी, और अगर कोई करे तो कबूल नहीं होगी, ख्वाह सारे शफात करने करने वाले जमा होकर शफात का जोर लगाए, हरगिज नफा नहीं देगी। इसी की तरफ इशारा करने के लिए शफातुश शाफीन बिसीगे जमा लाया गया है, यानी शाफीन की शफात, गोया के सारे मिल करके भी अगर शफात करने की कोशिश करेंगे ना, फिर भी काफिर के लिए शफात कबूल नहीं की जाएगी। काफिर के लिए किसी की शफात नाफे नहीं, मोमिन के लिए नाफे होगी। इस आयत से ये भी मुस्तफाद होता है, यानी ये भी हमें फायदा मिलता है इस आयत से, कि कुफार के अलावा मुसलमानों के लिए अगरचे वो गुनहगार हों, शफात नफा देगी, जैसा कि बहुत सी अहादीस सहीहा में अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया सुलहा बल्कि आम मोमिनीन का दूसरों की शफात करना और कबूल होना साबित है। ठीक है, अम्बिया की शफात तो समझ में आती है, आसान पता है सबको। ठीक है, औलिया की शफात, ये भी जो है वो अहले सुन्नत और जमात वाले जो है औलिया की शफात के भी कायल हैं। ठीक है, लेकिन आम मोमिनीन भी एक दूसरे की शफात करेंगे, वो कैसे भाई? उसके लिए एक मिसाल जो हमने अपने हजरत से ही सुनी कि किसी ने किसी को पानी पिलाया होगा। ठीक है, तो वो पानी, जिसको पानी पिलाया था, जब उसके जन्नत में जाने का फैसला हो जाएगा, तो वो अल्लाह ताला से कहे, अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं और जिसने मेरी प्यास में मुझे पानी पिलाया था वो जो है वो जहन्नुम में जाए, है ना। तो इस तरीके से ये जो है ना कि अल्लाह की रहमत के 99 हिस्से उस दिन जो है वो एक्टिवेट हो चुके होंगे, राइट। तो फिर ऐसे ऐसे बहाने बन करके भी फिर लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन सारा मसला हमारा तो ये है ना कि उस वक्त तक तो, यानी उसके ऊपर हम भरोसा करके जो है वो बुरे अमाल नहीं कर सकते, उससे पहले जो मुसीबतें पड़ रही होंगी, हम तो उन मुसीबतों से भी बचना चाहते हैं ना। ठीक है, तो इस वजह से गुनाह करने का ऑप्शन फिर भी नहीं है कि जी अल्लाह की रहमत होगी या फिर गुनाह सारे माफ हो जाएंगे और फिर हम जन्नत में चले जाएंगे, और इस वजह से चलो दबा के गुनाह करते हैं। ठीक है, अच्छा फायदा ये जरा आपसे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के पढ़ लेते हैं ताकि ये सूरत आज खत्म हो जाए इंशाल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि आखिरत में अल्लाह के फरिश्ते और अम्बिया और शुहदा और सालिहीन गुनाहगारों की शफाअत करेंगे और वो उनकी शफाअत से जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे, बजुज उन 4 किस्म के मुजरिमीन का जिनका जिक्र ऊपर आया है, यानी जो नमाज ज़कात के तारिक हैं और जो अहले बातिल कुफार के खिलाफ इस्लाम बातों में की खिलाफ इस्लाम बातों में शरीक रहते हैं और जो क़यामत का इनकार करते हैं। इससे मालूम होता है कि बेनमाज और तारिक ज़कात के लिए शफात कबूल नहीं होगी, यानी बज़ाहिर इससे मालूम होता है, बज़ाहिर के लफ्ज़ यहाँ पर लिख लें ठीक है, ताकि इबारत से आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो इससे मालूम होता है कि बज़ाहिर बेनमाज और तारिक ज़कात के लिए शफात कबूल नहीं होगी, मगर दूसरी रिवायत से सही ये मालूम होता है, यानी सही बात पता लगती है कि आयत में जिन लोगों की शफात कबूल ना होना मजकूर है वो मुराद हैं जो इन 4 जराइम के मुजरिम हों, जिनमें तकजीब कयामत भी दाखिल है। ठीक है, यानी काफिर। ठीक है, तकजीब के अलावा अलग अलग दूसरे जुर्म करने वाले की ये सजा होना जरूरी नहीं है, यानी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी तो यानी मुसलमान था लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था, तो इस आयत से ये साबित नहीं होता कि उसकी कोई शफाअत भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो तकजीब के अलावा अलग अलग दूसरे जुर्म करने वाले की सजा होना जरूरी नहीं है, मगर बाज रवायात हदीस में खास खास गुनाहों के मुर्तकिब के मुतालिक भी ये आया है कि वो शफाअत से महरूम रहेगा, जैसे हदीस में कि जो शख्स शफाअत के हक होने ही का मुनकर हो, अल्लाह हो, ये बात बहुत खतरनाक बात है कि जो शख्स शफाअत के हक होने ही का मुनकर हो या हौज़े कौसर के वजूद का मुनकर हो, उसका शफाअत और हौज़े कौसर में कोई हिस्सा नहीं। क्यों ये इतनी इतनी इम्पोर्टेंट बात है? क्योंकि इस जुमले के अंदर ये फरमा रहे हैं कि जिन जिन चीजों का हम इनकार करते हैं ना, ठीक है, वो चीजें हमारे अंजाम से गायब कर दी जाती है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आप हौज़े कौसर का इनकार भी कर रहे हैं और आपकी दूसरी नेकियों की वजह से, आपकी जो है वो चैरिटी वर्क और आपकी नमाजों वगैरह की वजह से और दूसरे कामों की वजह से आपको जो है फिर भी हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा। भाई आप तो हौज़े कौसर का इनकार कर रहे थे, आपका इनकार आपके अंजाम के अंदर से हौज़े कौसर को निकाल दे रहा। ठीक है, तो ये कोई मामूली मसला तो नहीं है ना। उसी तरीके से शफाअत, ठीक है, अब जो शफाअत का इनकार करे तो फिर उसके लिए शफाअत जो है ना फिर वो कल अदम हो जाएगी, कल अदम, गोया के उसके लिए शफाअत एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाय उसके गुनाहों की, उसके बदआमालियों की वजह से नहीं बल्कि उसके अकीदे की खराबी की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो शफाअत के अकीदे का मुनकर है, इनकार करने वाला है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी अमल बुरे करने की वजह से नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल बात का इनकार करने की वजह से उसके अंजाम में शफाअत को गायब कर दिया जाएगा, कल अदम बना दिया जाएगा, जैसे कि वो थी नहीं शफाअत इसके लिए। ठीक है, यही तो मसला काफिरों का भी है ना कि काफिर जो है वो जब कयामत का इनकार कर देता है, भाई उसने तो कयामत का इनकार कर दिया, अब क्या लेने करे, अब क्या लेने के लिए आए हो तुम कयामत के दिन, अब क्या तुम अपने नेक अमाल लेकर के आ रहे हो, अपने चैरिटीज लेकर के आ रहे हो, और अपने, भाई तुमने तो इनकार ही कर दिया था कि ये तो होना ही नहीं वाला है, कयामत तो होने ही नहीं वाली है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। फमाल तस्करतिन, यहाँ तस्करे से मुराद कुरान हकीम है। देखिए यही बात जो है ना हमारे ऊपर, जो अल्हम्दुलिल्लाह इन इस किस्म की हरकतें तो हम नहीं करते हैं ना, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है कि जब हम ना अपने जो मशायख होते हैं ना, ठीक है, हमारा ये मसला जो है ना वो अपने मशायख के साथ हो जाता है। ठीक है, कि हम ना उनका इनकार कर देते हैं कि जी बस ये तो ऐसे ही है, बस इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है और ये तो बस यानी फजूल के हैं, खाम खा के एक्स्ट्रा जो है ना, उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है। और हम कर रहे थे ना अच्छा खासा, तो हमारी जिंदगी गुजर रही थी, नमाजें भी पढ़ रहे थे, तलावतें भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो इनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है भाई, इनकी क्या जरूरत है भाई, ठीक है ना। यानी ये इररिलेवेंट है हमारी जिंदगी, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने उनका इनकार कर दिया, ठीक है ना, आपने उनकी जरूरत का इनकार कर दिया। तो भाई ये जो आप जरूरत का इनकार कर रहे हैं ना, ये इनकारी आपकी सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी की हद तक नहीं रहेगी, बल्कि कयामत के दिन भी जब आपके किसी गुनाह की वजह से या किसी रूहानी बीमारी की वजह से, लेट्स फॉर एग्जाम्पल तकब्बुर, जाहिर तकब्बुर वाला शख्स जो है वो अपने बुजुर्गों का इनकार करता है ना, तो जब तकब्बुर की वजह से ना आपको जरूरत पड़ेगी ना उस दिन कि भाई कोई आकर के मेरी शफात कर दे, तो फिर ये लोग जो हैं जिनका आपने इनकार कर दिया था, अब इनकी शफात आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये शफात जो है वो यानी फिर हम फिर उसके मुस्तहिक नहीं, यानी वो कहेंगे अब क्या लेने के लिए आए हो, अब ये इनसे क्या तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी शफात करके तुम्हें जन्नत में डालेंगे। तुमने तो उनका इनकार कर दिया था, तुमने तो इनकी इंपॉर्टेंस का इनकार कर दिया था, इनके रेलेवेंस का इनकार कर दिया था, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, बहुत अहम, बिकॉज हमारी जिंदगियों में ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इस किस्म की गलतियां कर जाते हैं। क्या जो लोग कुरान पढ़ के बख्शने को नहीं मानते, उनको इंतकाल के बाद हम उनको पढ़ के बख्शेंगे तो वो उन तक नहीं पहुंचता। देखिए ये आजिज जो बार बार रिपीट कर रहा है ना इस बात को, इसकी इम्पोर्टेंस को आपके सामने बयान कर रहा है ना, तो ऐसे को थोड़ी बयान कर रहा है, ठीक है ना। अब आप उसूल अगर जो इस इबारत से जाहिर है ये उसूल, ठीक है, अब मैंने ये लिखा हुआ कहीं पढ़ा नहीं है, जो आप सवाल कर रही है ना, तो इसका जवाब मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, हो सकता है किसी ने पूछा होगा जवाब, किसी शेख ने दिया होगा इसका जवाब, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट से तो यही बात सामने आती है, ठीक है, कि उनके लिए ये जो कुरान की जो इसाले सवाब किया जा रहा है ना, ये इसाले सवाब उनके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको साथ साथ डिस्क्लेमर भी बता रहा हूँ कि मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बस इसको इस उसूल को इसके ऊपर मुंतबिक करके एक कंक्लूजन निकाल के आपको बता रहा हूँ। अलबत्ता ये बात हमारे जाती मुशाहिदे में भी आई, जाती मुशाहिदे के अंदर, कि जो ऐसे लोग थे ना, ठीक है, तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला बचाए हमें इस किस्म की गलतियों से, ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगियों में ना लोगों को कुरान नहीं पढ़ने दिया दूसरों के लिए, ठीक है, कि भाई इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो फायदे नहीं पहुंचाएगा, मरने वालों को कोई फायदा नहीं पहुंचता तुम्हारे कुरान पढ़ने से, ठीक है। अब हमने यानी अपनी आंखों से देखा या हमें करीबी बंद लोगों ने देख करके बताया कि जब वो मर गए ना, तो उनके लिए अगर कोई चाह भी रहा है ना कुरान पढ़ना, उसको भी रोक दिया जा रहा है, उसको भी मना किया जा रहा है, अल्लाह के बंदे तुम अपना नहीं पढ़ रहे हो तो ना पढ़ो, दूसरे को तो मत रोको ना। लेकिन नहीं, वो मरने वाला जो है ना वो भी खिलाफ था इस बात के, और उसके जो आलो औलाद है वो भी इसके खिलाफ है, अब पढ़ने वालों को भी नहीं पढ़ने देते, राइट। तो अब क्या कहें उसको, नहीं, ये वही होता है जो उलमा से जो बोझ रखते हैं ना सारी जिंदगी ना, जो ऐसी हरकतें जो कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो हम समझते हैं ना कि मामूली बात है यार, बस मौलवियों को तो नहीं माना, बाकी कुरान को मान रहे हैं, नबी को मान रहे हैं, और आखरत को मान रहे हैं, और बड़े बड़े नेकी का काम भी कर रहे हैं, और इकामत दीन के भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और लोगों की मदद के भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो मसला क्या है अगर खाली मौलवियों को नहीं माना तो? भाई खाली मौलवियों को जो नहीं माना ना, तो उससे आपका अकीदा खराब होगा, और उसमें आपकी इस्लाह करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मौलवी ही हैं जो कि अकीदे की इस्लाह करते हैं, ठीक है। इनको अल्लाह ताला ने इस काम पे लगाया हुआ है, तो आपने तो उनको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, बाकी लगे चले जा रहे हैं आप नेक कामों के अंदर, तो आपके नेक काम अपनी तरफ, लेकिन आपका अकीदा जो है ना, जब वो खराब होगा ना, तो उसकी इस्लाह कैसे होगी आपके, है? तो इसको मामूली नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ा मसला है ये, ठीक है। अकीदा खराब हो गया तो फिर कुछ तो ऐसे अकायद हैं कि फिर जन्नत से महरूम हो जाएंगे, उसके बाद कोई जन्नत शन्नत नहीं मिलेगी अमाल की वजह से, ठीक है। फमाल तस्करीन, यहाँ तस्करे से मुराद कुरान करीम है, क्योंकि तस्करे के लफ्जी मानी याद दिलाने वाली चीज के हैं, और कुरान अल्लाह ताला की सिफात कमाल और उसकी रहमत व गज़ब और सवाब व अजाब को याद दिलाने में बेनजीर है, यानी कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई शेख साहब, कोई मौलवी साहब, कोई पीर साहब, राइट, वो अपने बयान के अंदर ना अल्लाह ताला को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते आपके सामने जैसे कि ये कुरान करवाते हैं, क्योंकि ये कुरान का अपना, ये अल्लाह ताला का अपना कलाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप को जैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्या कोई शेख साहब उसको अल्लाह ताला को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वैसे, राइट। शेख साहब ने तो कभी अल्लाह को देखा ही नहीं, अल्लाह की कभी आवाज़ ही नहीं सुनी शेख साहब ने तो, राइट। तो शेख साहब कैसे कुरान का मुकाबला कर सकते हैं, है ना। तो कुरान का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना। तो हम कुरान को छोड़ करके, यानी शेख साहब को सुनने को मना कोई नहीं कर रहा, हमारा तो काम ही ये करना भाई, ठीक है। लेकिन हम कुरान को जिस तरीके से छोड़ रहे होते हैं ना, जिस तरह से हमने उसको बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से निकाला हुआ है ना, कुरान की तिलावत को भी और कुरान को समझने को भी, तो बहुत बड़ा मसला है ना। फरमाया कि आखिर में कल्ला इन्नहु तज़किरा, यानी बिला शुबा कुरान तज़किरा है जिसको तुमने छोड़ रखा है। तस्वरा के मानी शेर के भी आते हैं और तीर अंदाज शिकारी के भी हैं, इस जगह सहाबा कराम से दोनों मनकूल है। हुआ अहलु तक्वा व अहलु मगफिरा, अल्लाह ताला का अहले तक्वा होना बेईमानी है कि सिर्फ वही उसका मुस्तहिक है कि उससे डरा जाए, ठीक है, यानी तक्वा वाला डरना, ठीक है। वरना तो शेर से भी डरना जरूरी है, वरना वो खा जाएगा करके, राइट। आग से भी डरना जरूरी है, वरना वो जला देगी, है ना। तो यहाँ पे तक्वा मुराद है, यहाँ पे वो वाला डरना मुराद नहीं है, ठीक है। तो वो जो डरना है ना, जो अल्लाह से होता है, जिसको खशियत भी कहते हैं, वो सिर्फ अल्लाह से, ठीक है। अच्छा, और इसकी नाफरमानी से बचा जाए, और अहले मगफरत होने का मतलब यह है कि वही ऐसी जात है जो बड़े से बड़े मुजरिम गुनाहगार को उसके सब गुनाह जब चाहते हैं बख्श देते हैं, और किसी का यह हौसला नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा सिर्फ काम जो है वो तौबा करना है और इसरार ना करना अपने गुनाहों के ऊपर, बाकी कितने भी बड़े गुनाह हो, कितना किया हो। भाई सहाबा कराम तो ऐसे ऐसे थे जिन्होंने 70-70 बेटियों को जिंदा दरगोर किया था, ठीक है ना। कोई तसव्वुर आज का बड़े से बड़ा जालिम तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी बेटियों को एक नहीं 70 जिंदा दरगोर कर जाए, राइट। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तौबा करना जो है ना, ये इससे कभी भी जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी तौबा को डिले नहीं करना चाहिए कि भाई ये क्या बात हुई। कल मैंने मर्दों में भी यही बातें हुई थी, क्योंकि तौबा के मजमून चल रहा था, तो करके बस आपकी जान छोड़ेंगे। एक तो ये कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बंदा जो है ना अल्लाह ताला के मुकाबले में बंदे की तो कोई हैसियत नहीं। तो जब बंदे की कोई हैसियत नहीं है, तो उसका जो अमल होता है ना, जैसे गुनाह बंदे का अमल है ना, तो बंदा जब छोटा है तो उसका अमल भी छोटा है, क्योंकि मौसूफ बंदा है और अमल उसकी सिफत है, ठीक है। तो जब मौसूफ इतना छोटा सा है, तो उसकी सिफत कैसे बड़ी हो सकती है। तो अल्लाह ताला के नजदीक कितना ही बड़ा गुनाह हो, कोई हैसियत नहीं रखता। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम दिल से तौबा नहीं भी करना चाह रहे हो, फिर भी जुबान से और जाहरी अंदाज में फिर भी तौबा करो, ठीक है, जुबान से फिर भी तौबा करो। और उसकी उन्होंने क्या जबरदस्त वजह लिखी है कि मन तशब्बह बिकौम फहुव मिन, ये उसूल नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि भाई जो किस कौम, जिस कौम के साथ तशब्बो इख्तियार करेगा, तो अल्लाह ताला उसी के साथ उसका मामला कर देंगे। तो भाई तवाबीन में हम शामिल नहीं हो सके अगर उनके साथ जाहिरी तशब्बो इख्तियार कर लेंगे। क्या मतलब, गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा जो है ना, अगर जाहिरी तौर पर भी अल्फाज से भी जो है वो तौबा कर लेंगे ना, तो अल्लाह ताला शायद इसी को सबब बना करके हमें हमारा हशर तवाबीन के साथ कर दे, ठीक है। तो तौबा को जो है ना वो हरगिज हरगिज जो है वो कम अहमियत हम नहीं दे सकते हैं, हम किसी भी सूरत में इससे यानी सरफे नजर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को, जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, याद हैं, भूल चुके हैं, सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और हमें उन सब से बच करके आइंदा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। वा आखिर दुआना।